الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امیر اہل سنت سے نماز وتر کے بارے میں سوال جواب یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے دعائے جانشین امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے نماز وتر کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے اسے با جماعت نماز کی پابندی نصیب فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ عنہ دعائے قنوت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے بحر شریعت جلد اول صفحہ 655 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سوال نمازوں میں ہم وقت کی نیت کرتے ہیں مثلا فجر میں فجر کے وقت کی ظہر میں ظہر کے وقت کی تو نماز وتر ادا کرتے وقت کس وقت کی نیت کریں جواب 3 رکعت وتر واجب کی ہی نیت کریں گے وقت عشاء بولنا شرط نہیں ہے کیونکہ یقینی بات ہے کہ نماز وتر عشاء میں ہی ہوتی ہے نیز دل میں نیت ہونا کافی ہے زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں البتہ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے سوال کیا وتر کی تیسری رکعت کی تکبیر سے پہلے ہاتھ نیچے لٹکانا ضروری ہے جواب وتر کی تیسری رکعت کی تکبیر کو تکبیر قنوت کہتے ہیں اور یہ واجب ہے اور اس کے لیے خصوصی طور پر ہاتھ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسے ہی سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ لیں تو اب ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ لیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں سوال اگر وتر میں تکبیر قنوت یعنی دعائے قنوت کے لیے کہی جانے والی تکبیر کہنا بھول گئے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا جواب تکبیر قنوت واجب ہے اگر واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو لازم ہے اگر جان بوجھ کر تکبیر نہیں کہی یا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو نماز لوٹانا واجب ہے سوال کیا وتر میں دعائے قنوت کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں جواب جی ہاں اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی کہہ لیجئے اور اگر یہ کہنا بھی نہیں آتا تو یا ربی 3 مرتبہ کہہ لیجئے سوال اگر کوئی نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی جواب دعائے قنوت پڑھنا واجب تھا اگر بھول گیا تو سجدہ سہو کر لے نماز درست ہو جائے گی سوال وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے جواب کیونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ میں بھی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز وتر کا جو طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت ہے اور یہ کہنا واجب ہے لیکن ہاتھ اٹھانا سنت ہے سوال ہم وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں جواب وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہی ضروری نہیں دوسری کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد سوال अगर इमाम वितर की नमाज पढ़ाते हुए तकबीर कुनूत कहे और मुक्तदी रुकू में चले जाएं तो क्या रुकू से वापस आकर दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं? क्योंकि इनफरादी तौर पर वितर पढ़ने में ऐसा हो तो रुकू से वापस आकर कुनूत पढ़ने की इजाज़त नहीं होती। जवाब, इमाम की पैरवी वाजिब है। जो चीज़ें फ़र्ज़ वाजिब हैं मुक्तदी पर वाजिब है कि इमाम के साथ उन्हें अदा करे, लिहाजा मुक्तदी रुकू में चला गया हो तो वापस आ जाए और इमाम के साथ दुआए कुनूत पढ़े। सवाल, कोई शख्स वितर की दूसरी रकात में शामिल हुआ और तीसरी रकात में इमाम के साथ दुआए कुनूत पढ़ ली तो क्या वो अपनी तीसरी रकात में दोबारा दुआए कुनूत पढ़ेगा? जवाब, दूसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ ली तो तीसरी रकात में दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं, तीसरी रकात में सूरतुल फातिहा और कोई सूरत मिलाकर नमाज मुकम्मल कर ले। सवाल, इमाम के पीछे अगर वितर के पहले कादे में भूलकर अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो क्या वितर दोबारा पढ़ने होंगे? जवाब, मुक्तदी वितर की नमाज में इमाम के पीछे जानबूझकर पहले कादे में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ ना पढ़े, अलबत्ता बेख्याली में पढ़ लिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं। सवाल, नमाज तरावी से पहले नमाज वितर पढ़ सकते हैं या नहीं? जवाब, पढ़ तो सकते हैं मगर बेहतर यही है कि पहले तरावीह पढ़ें। सवाल, कुछ लोग इशा के चार फर्ज, दो सुन्नत, दो नफल और तीन वितर पढ़ते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, ऐसा करना कैसा? जवाब, इशा की नमाज में चार फर्ज, उसके बाद की दो सुन्नते मौकदा और तीन वितर पढ़ना ज़रूरी हैं। इसके अलावा फ़र्ज से पहले की चार रकात, सुन्नत गैर मौकदा, दो सुन्नत के बाद दो नफल और वितर के बाद दो नफल भी पढ़ने चाहिए, सवाब मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। सवाल, कज़ाए उमरी किन नमाजों की होती है? जवाब, कज़ाए उमरी सिर्फ फ़र्ज और वितर की होती है। एक दिन की 20 रकातें बनती हैं, दो फ़र्ज नमाज फजर के, चार फ़र्ज नमाज ज़ुहर के, चार फ़र्ज नमाज असर के, तीन फ़र्ज नमाज मगरिब के और चार फ़र्ज नमाज इशा के और तीन वितर। सुन्नत और नफल की कज़ा नहीं है। अलबत्ता अगर फजर की कज़ा उसी दिन निसफ़ नहारे शरई से पहले की तो सुन्नत फजर अदा करना मुस्तहब है, वरना सिर्फ फ़र्ज ही अदा करे। सवाल, क्या इशा के फ़र्ज और वितर की कज़ा अलग अलग की जा सकती है? जवाब, जैसे सुबह इशा के फ़र्ज पढ़े और शाम को वितर पढ़ लिए, इस तरह अदायगी हो तो जाएगी, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि कज़ा नमाज जल्द अज़ जल्द अदा कर ली जाए। हाँ, अगर कोई साहिब तरतीब है तो उसको अगली नमाज पढ़ने से पहले पिछली नमाज पढ़ना होगी। जैसे अगर किसी की नमाज इशा कज़ा हो गई और उस पर 6 नमाजों से कम नमाजें कज़ा हैं तो उस पर फ़र्ज़ है कि ये फजर की नमाज पढ़ने से पहले कज़ा नमाजें अदा कर ले। अगर ये कज़ा पढ़ने से पहले फजर पढ़ेगा तो फजर नहीं होगी। अलबत्ता फजर का वक्त इतना तंग रह गया कि अगर कज़ा पढ़ने खड़ा होगा, वक्त निकल जाएगा तो फजर ही पढ़े, कि इस सूरत में फजर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, इसकी फजर अदा हो जाएगी, मगर वो कज़ाएँ अब भी ज़िम्मे पर बाकी रहेंगी। अगर किसी की 6 नमाजों से ज़्यादा नमाजें कज़ा हैं, यानी 6ठी नमाज का वक्त भी निकल चुका है, तो ये अब साहिब तरतीब ना रहा। अब इसके लिए इजाज़त है, चाहे उस वक्त की नमाज पहले पढ़ ले या ज़िंदगी की कोई कज़ा नमाज पहले पढ़ ले। जिन पर कई नमाजें कज़ा हैं वो कन्फ्यूज़ ना हों कि हमारी कोई नमाज होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो साहिब तरतीब नहीं हैं तो अपनी वक्ती नमाजों के साथ साथ क़ज़ा नमाज भी पढ़ते रहें कि इन क़ज़ा नमाज़ों को जल्द अज़ जल्द अदा करना वाजिब है। लिहाजा खाने पीने और रोज़गार कमाने के अलावा जो वक्त बचे उसमें तमाम नमाजें पढ़ लें। नंबर वन, क़ज़ा नमाजों की आसान अदायगी के बारे में मालूमात के लिए अमीर अहल सुन्नत दामद बरकातुमल आलिया का रिसाला क़ज़ा नमाजों का तरीक़ा पढ़िए या दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम मालूमात में इजाफा होने के साथ साथ क़ज़ा नमाजों के अहम शरई मसाइल का इल्म हासिल होगा। सवाल, कोई शख्स नापाक हो और उसे याद ना रहे कि वो नापाक है और इसी हालत में नमाजें पढ़ ले तो उन नमाजों का क्या हुक्म होगा? जवाब, नापाकी यानी बेगुस्ल होने की हालत में पढ़ी गई नमाजें हुई ही नहीं, उनको फिर से पढ़ना ज़रूरी है। अगर वक्त निकल चुका है तो फ़र्ज़ों की कज़ा करे और वितर में ऐसा हुआ है तो उनकी भी कज़ा करे। नंबर टू, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, सुन्नत फ़ज्र अगर मा फ़र्ज कज़ा हुई हों तो ज़हवाए कुबरा आने तक उनकी कज़ा है, इसके बाद नहीं। और अगर फ़र्ज़ पढ़ लिए सुन्नत रह गई हैं तो बाद बुलंदी आफ्ताब इनका पढ़ लेना मुस्तहब है, क़बल तुलू रवा यानी जायज़ नहीं। सवाल, मालिक यानी सेठ कहता है कि सिर्फ नमाज के फ़र्ज़ पढ़कर दोबारा काम शुरू कर दो, अगर मैं उसकी बात नहीं मानता और पूरी नमाज पढ़कर काम शुरू करता हूँ तो क्या मेरी नमाज हो जाएगी? जवाब, जब फ़र्ज़ अदा कर लिए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा भी तर्क ना की जाएं क्योंकि उन्हें अदा करने की भी ताकीद है। वितर भी चूँकि वाजिब हैं लिहाजा वितर भी पढ़े जाएं। अलबत्ता अगर सेठ नफल पढ़ने से मना करता है तो अब नफल ना पढ़े जाएं। सवाल, अगर तरावी पढ़ना भूल जाएं तो वितर के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? जवाब, वितर के बाद तरावी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। सवाल, औरतों का तख्त पर नमाज पढ़ना कैसा? जवाब, औरत हो या मर्द, तख्त पर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है जबकि सजदा दुरुस्त तरीके से किया जाए। किसी नरम चीज़ मसलन घास, रुई, कालीन वगैरह पर सजदा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जायज़ है वरना नहीं। अलबत्ता बाज़ औरतें जब तख्त पर नमाज पढ़ती हैं तो बैठकर पढ़ती हैं, तो अगर फ़र्ज़ नमाज है या फजर की सुन्नतें या वितर हैं तो उन्हें बग़ैर शरई इजाज़त के बैठकर पढ़ना जायज़ नहीं क्योंकि इन नमाजों में क़याम फ़र्ज़ है। हाँ, नफल बैठकर पढ़े जा सकते हैं लेकिन इस सूरत में आधा सवाब मिलेगा जबकि बिला उज्र बैठकर पढ़े। दुआए कुनूत में बुरी सोहबत से बचने का बयान। सवाल, बुरी सोहबत से कैसे बचा जा सकता है? जवाब, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ गंवाना पड़ता है। बुरी सोहबत में चूँकि लज्जत बहुत होती है इसलिए उसे छोड़ने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन उसके नुकसान पर गौर करना चाहिए कि बुरी सोहबत ऐसी ख़तरनाक होती है कि ईमान भी बर्बाद कर सकती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तातुवानी दूर शो अज यार बद, मारे बद तनहा हमें बर जा जनद, यार बद बदतर बुवद अज मारे बद, यार बद बर दीन व बर ईमान जनद। यानी जहां तक हो सके बुरे दोस्त से दूर रहो कि बुरा दोस्त सांप से भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। सांप तो सिर्फ जान लेता है जबकि बुरा यार ईमान लेता है। आजकल दोस्तों की बैठक में गीबत, चुगलियां और दीगर गुनाहों के साथ साथ नाऊज़ु बिल्लाह कुफ्रियात भी चल रहे होते हैं। यूं बुरी सोहबतों में ईमान ज़ाया होने का ख़तरा है। मक्के के काफिर उकबा बिन अबू मुआइद का वाकया है कि ये ईमान ले आया था लेकिन फिर उसके दोस्त ने उसे ताना दिया और कन्वेंस यानी आमादा किया तो वो मुर्तद हो गया। कुरान करीम ने उसका वो कौल नकल किया है जो वो क़यामत के दिन अफसोस के साथ कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। पारा 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 28। तर्जमाए कंजुल ईमान। वाए खराबी मेरी, हाय किसी तरह मैंने फुलाने को दोस्त ना बनाया होता। बुरा दोस्त ईमान ले सकता है और अगर ईमान नहीं लेता तो बुराइयों में ज़रूर डाल देता है। अकेला आदमी आम तौर पर गुनाह कम करता है, लेकिन जब बुरा दोस्त मिलता है तो गीबत में मुबतला हो जाता है और गुनाहों की प्लानिंग यानी मंसूबा बंदी शुरू हो जाती है। इसलिए अच्छा दोस्त तन्हाई से बेहतर है और बुरे दोस्त से तन्हाई अच्छी है। दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, उसकी बातों से नेकियों और अमल में इजाफा हो, उसकी गुफ्तगू से अल्लाह पाक का खौफ, आखिरत का डर और जन्नत का शौक पैदा हो और वो जहन्नम के आदाब से डराए। इसके लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता आशिकाने रसूल की सोहबत में रहिए, क्योंकि ये अच्छी सोहबत है। जब हम वितर की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें ये भी पढ़ते हैं, व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक, यानी या अल्लाह मैं तेरे फाजिर यानी नाफरमान बंदे को छोड़ता हूँ। गोया बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में अहद और वादा कर रहा है कि मैं तेरे नाफरमान बंदे को छोड़ता हूँ, लेकिन सलाम फेरते ही नाफरमान बंदे की सोहबत में जाकर बैठ जाता है। अल्लाह पाक हम सबको बुरी सोहबत से बचाए और अच्छी सोहबत नसीब फरमाए। मकतबतुल मदीना की किताबों का मुताला भी अच्छी सोहबत है, यूं ही मदनी चैनल की सोहबत भी मदीना मदीना है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बंदा गुनाहों से बच जाता है। सोशल मीडिया की सोहबत खतरनाक है, ये भी बाज़ औक़ात ईमान को गारत कर देती होगी और इसका पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी एक से एक कुफ्रिया डायलॉग्स यानी जुमले बोले जाते होंगे और तरह तरह की वाहियात बातें बकते होंगे। इसलिए सोशल मीडिया का यूज़र यानी इस्तेमाल करने वाला खतरे से दूचार रहता है। सोशल मीडिया पर हर तरह का क्लिप वायरल यानी आम हो रहा होता है। ये जो मकूला है कि सुनो सबकी करो अपनी, कुरान और हदीस के खिलाफ है और गलत है। शरीयत ने सबकी मसलन बद मजहब की सुनने से मना किया है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अनहु को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात शरीफ के औराक पढ़ने से मना कर दिया था और फरमाया था कि मूसा अली सलाम भी इस वक्त होते तो उन्हें भी मेरी पैरवी किए बगैर कोई चारा ना होता। तौरात शरीफ, जबूर शरीफ और इंजील शरीफ जिनमें खुर्द बुर्द नहीं हुई वो बेशक अल्लाह पाक का कलाम है और उसी की तरफ से नाजिल करदा है। उनके एक एक हर्फ पर हमारा ईमान है, लेकिन अब चूंकि उनके अहकामात मनसूख हो चुके हैं और उनमें तब्दीली भी हो चुकी है, इसलिए अब अगर कोई उन्हें पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो यानी उलझ जाएगा, इसलिए उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े आलिम थे। जब उन्हें मना कर दिया गया तो मैं और आप कौन हैं? हमारे पास कितना इल्म है? हम सोचते हैं कि इसकी किताब पढ़ लें, उसकी तकरीर सुन लें, उसका क्लिप देख लें, उसके पेज का जायज़ा ले लें कि उसने क्या क्या बोला है, फिर ठग करके उसे वायरल भी कर देते हैं। अल्लाह पाक से डरना चाहिए। अभी तो कोई कुछ नहीं बोलता, ना ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है, लेकिन जब मरने का टाइम आएगा तब पता चलेगा। शरू सुदूर में है कि एक शख्स की मौत का वक्त आया, उसे कलिमा तलकीन किया जाता मगर वो पढ़ नहीं पा रहा था। वो कह रहा था कि ये आदमी मुझे नजर आ रहे हैं, ये कहते हैं कि तुझे कलिमा नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि तू उन लोगों की सोहबत में रहता था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु को बुरा भला بولتے تھے۔ سوشل میڈیا کے یہ غلط معاملات ایمان کی بربادی اور برے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک اور اس کے محبوب ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے صرف دعوت اسلامی اور علماء اہل سنت کے کلپ دیکھیں اور انہیں ہی وائرل کریں۔ اس کے ذریعے گناہوں سے بھی حفاظت ہوگی اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اگر آپ میری بات سمجھنے کے بجائے مجھے برا بھلا کہیں گے تو پھر مزید آپ کی آخرت تباہ ہوگی، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اگر آپ میری بات مان جائیں گے تو مجھے کون سی جائیداد یا رقم مل جائے گی؟ میں تو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں۔ اگر یہ راضی ہو جائیں تو پھر کوئی اور راضی ہوتا ہے یا ناراض مجھے کیا پرواہ، بس رب اور اس کے محبوب راضی ہو جائیں تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نئی کتاب نماز کا طریقہ سے امام احمد رضا خان کے 14 حروف کی نسبت سے نماز وتر کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، نماز وتر واجب ہے۔ نمبر 2، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 3، وتر کی نماز عشاء کے فرضوں کے بعد اور صبح صادق سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے۔ عشاء و وتر کا وقت ایک ہے، مگر باہم ان میں ترتیب فرض ہے کہ عشاء سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں۔ البتہ بھول کر وتر پہلے پڑھ لیے یا بعد کو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے۔ نمبر 4، جسے آخری شب میں جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پچھلی رات یعنی رات کے آخری چھٹے حصے میں وتر پڑھے، ورنہ بعد عشاء پڑھ لے۔ نمبر 5، وتر کی 3 رکعتیں ہیں۔ نمبر 6، اس میں قاعدہ اولی واجب ہے، صرف تشہد پڑھ کر کھڑے ہو جائیے۔ نمبر 7، تیسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیر قنوت اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ نمبر 8، جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اسی طرح پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھائیے پھر اللہ اکبر کہیے۔ نمبر 9، پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیے۔ دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بك ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ ترجمہ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری اطاعت کی طرف دوڑتے اور جلدی کرتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ نمبر 10، دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 11، جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکیں وہ یہ پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے رب، ऐ रब हमारे, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अदाबे दोजख से बचा। या 3 बार ये पढ़ें, अल्लाहुम्मग़फिरली, यानी ए अल्लाह मेरी मग़फिरत फरमा दे। नंबर 12, अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए तो वापस ना लौटिए बल्कि सजदाए सहव कर लीजिए। नंबर 13, वितर जमात से पढ़ी जा रही हो, जैसा कि रमज़ान मुबारक में पढ़ते हैं, और मुक्तदी कुनूत से फारिग ना हुआ था कि इमाम रुकू में चला गया, तो मुक्तदी भी रुकू में चला जाए। नंबर 14, मसबूक यानी जिसको पूरी जमात ना मिली वो इमाम के साथ कुनूत पढ़े तो बाद को ना पढ़े, और अगर कोई शख्स इमाम के साथ तीसरी रकात के रुकू में मिला है तो बाद को जो पढ़ेगा उसमें कुनूत ना पढ़े। वितर का सलाम फेरने के बाद की एक सुन्नत। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वितर में सलाम फेरते 3 बार सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कहते और तीसरी बार बुलंद आवाज से कहते। वितर की जमात, रमजान शरीफ में वितर जमात के साथ पढ़ना अफजल है, ख्वा उसी इमाम के पीछे जिसके पीछे इशा व तरावी पढ़ी या दूसरे के पीछे। जन्नती फूल वाकया, हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, हजरत इब्ने सौबान रहमतुल्लाही अलैह ने अपने एक भाई से वादा किया कि रात को खाना उनके पास खाएंगे, लेकिन किसी सबब से तशरीफ ना ला सके हत्ता कि सुबह हो गई। अगले दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, आपने मुझसे वादा फरमाया था कि रात को खाना मेरे पास खाएंगे, फिर वादा खिलाफी क्यों की? आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, अगर मेरा तुमसे वादा ना होता तो मैं तुम्हें कभी भी ना बताता कि मुझे तुम्हारे पास आने से किस चीज़ ने रोका। जब मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी तो सोचा कि तुम्हारे पास आने से पहले वितर पढ़ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। चुनाचे जब मैं दुआए कुनूत पढ़ने लगा तो मेरे सामने एक सब्ज़ बागीचा लाया गया जिसमें तरह तरह के जन्नती फूल थे। मैं उसे देखता रहा हत्ता के सुबह हो गई। नमाज़े वितर के फजाई। हजरत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये खौफ हो कि रात के आखिरी पहर बेदार ना हो सकेगा उसे चाहिए कि वो सोने से कबल ही वितर अदा कर लिया करे, और जिसे ये खौफ ना हो तो उसे चाहिए कि रात के आखिरी पहर वितर अदा किया करे, क्योंकि रात के आखिरी पहर की नमाज में दिन और रात के मलाइका यानी फरिश्ते हाजिर होते हैं। हजरत खारिजा बिन हुजाफा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद एक ऐसी नमाज के जरिए से फरमाई है जो तुम्हारे हक में सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, और ये नमाज वितर है, और इसे तुम्हारे लिए इशा से तुलुए फज्र के दरमियान रखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से शबे कद्र का कयाम करेगा उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे।